प्रिय श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओं हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जब मैं गुनाहों में था तब तूने मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में था तब तूने मुझे बचा लिया। शैतान की जो दीवार तूने ही तोड़ दी। यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे भजूं। तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइली परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर हो गए हैं और इतना ही नहीं, वे परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा भी आरंभ कर दी है और तब परमेश्वर उन पर दोष लगाता है। तो मेरे मित्रों, आज हम उसके क्रमानुसार में आगे बढ़ते हुए अध्याय 4 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय हमारी विशेष प्रार्थना है अपने उन सभी श्रोता भाई बहनों के लिए जो दूर दराज में रहकर आपके जीवित वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो वे उसे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी संगति से, बुरे विचार से और शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। आप उन्हें शांति और आनंद प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन में आपको ग्रहण कर आपको महिमा देने पाएं। आज के अध्ययन पर आप अपने आशीष दें और हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हमने अध्याय 4 के पृष्ठभूमि में देखा था, जिसका विषय है परमेश्वर के समक्ष इसराइल दोषी है। होशे की पुस्तक में अब से आगे भविष्यद्वक्ता होशे के व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख नहीं किया गया है। पिछले अध्याय के अंतिम दो पदों के साथ होशे का व्यक्तिगत जीवन पाशुर में खो जाता है और ध्यान परमेश्वर तथा विश्वासघाती इसराइल पर केंद्रित होता है। इसराइल का स्वभाव एक वेश्या का सा हो गया है। अध्याय 4-14 में हम भविष्यवाणी को देखते हैं। इसराइल परमेश्वर के समक्ष दोषी है। अपनी दुखद पारिवारिक दशा के बाद अब होशे इसराइल को संदेश सुनाता है और वह परमेश्वर के दिल के दुख को भली भांति समझता है। अब तक तो परमेश्वर सामान्य रूप से ही कह रहा है कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने वेश्या का सा व्यवहार किया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। अब परमेश्वर उन्हें न्यायालय में खड़ा करता है और उन पर दोष लगाता है और अपना आरोप सिद्ध करता है। अध्याय 4 का संदेश है कि इसराइल नियम तोड़ने का दोषी है, दुराचार का दोषी है, परमेश्वर के वचन के तिरस्कार का दोषी है, मूर्ति पूजा का दोषी है। इस अध्याय की तुलना हम यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां यशाया दक्षिणी राज्य यहूदा पर दोषारोपण कर रहा है। मेरे मित्रों, यह सच है कि इसराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, मूसा की व्यवस्था। यहां हमें एक बात समझना है कि किसी भी राष्ट्र के लिए नियम और कानून परमेश्वर का प्रतिमान है, यदि वह राष्ट्र आशीष पाना चाहता है। जी हां, यह सब राष्ट्रों के लिए है। अब कोई देश यह कहे कि उनके देश में मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो मैं कहता हूं मेरे मित्रों कि लालच भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है, पैसे का लोभ मूर्ति पूजा है। हम इसराइल पर उंगली उठाकर कह सकते हैं उनका परमेश्वर त्याग लज्जा की बात है, परंतु हमें अपने आप को परख कर देखना है कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं है। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पहले पद में परमेश्वर कहता है कि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को इसराइल से शिकायत थी, उसका दिल उन्होंने तोड़ा था, वे विश्वासघाती थे। परमेश्वर कहता है इस देश के निवासियों के साथ परमेश्वर का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहां श्राप देने, झूठ बोलने, हत्या करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ और कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। आइए हम पढ़ते हैं होशे नबी की पुस्तक 4:1। लिखा है, हे इसराइलियों, यहवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। उसकी शिकायत है, पहला, उनमें ना तो कुछ सच्चाई है, दूसरा, ना कुछ करुणा, तीसरा, ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। मूर्ति पूजा के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्हें दयावान होना था। लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 पद में परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे अपनी दाख की बारी को चुनकर खाली न कर दें। उन्हें गरीबों और परदेशियों के लिए उसमें अंगूर छोड़ देना आवश्यक था। यह परमेश्वर का गरीबों के लिए प्रबंध था। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं और मैं पवित्र हूं। वे इस प्रबोधन को भूल चुके थे। उस देश में परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। वे दयावान नहीं रहे। उनमें धर्म तो बहुत था, परंतु परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। देखिए कि वे परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को कैसे तोड़ रहे थे। होशे 4 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, यहां शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। मेरे प्रियो, इन सब बातों में वे परमेश्वर की 10 आज्ञाएं तोड़ रहे थे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 13 से 16 पद में, तू हत्या मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू चोरी मत कर, तू झूठी गवाही मत दे। उनका यह पाप खून के रिश्ते में भी पाया जाता था। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं देकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी। आज कलीसिया 10 आज्ञाओं के अधीन नहीं कि उद्धार पाए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम 10 आज्ञाओं को ना माने। परमेश्वर ने हमें अधिक ऊंचे स्तर का जीवन जीने के लिए बुलाया है और पवित्र आत्मा द्वारा जीने का सामर्थ दिया है। यद्यपि परमेश्वर 10 आज्ञाओं के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करता है, वे हर एक देश के लिए एक प्रतिमान है। वे पाश्चात्य देश जो अपने को मसीही राष्ट्र कहते हैं, वे वास्तव में मसीही आचरण पर नहीं चलते। वे केवल मसीही रूप दर्शाते हैं, क्योंकि उनका विधान 10 आज्ञाओं पर आधारित है। अतः 10 आज्ञाएं सब देशों की व्यवस्था का आधार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, तू हत्या मत कर, तू व्यभिचार मत कर, और अन्य अनेक निषिद्ध आज्ञाएं हैं। परमेश्वर नशे के विरुद्ध आदेश देता है। वह समलैंगिक संबंधों के विरुद्ध भी कठोरता से कहता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा करने वालों का वह त्याग कर देता है। परमेश्वर ने इसराइल को दासत्व में भेजा क्योंकि वे ये सब पाप करते थे। मेरे मित्रों, आज हम भी इसी के दोषी हैं। इस देश में परमेश्वर का भय नहीं है। आप रविवार को आराधना की पुकार सुनते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग आराधना में आते हैं और बहुत ही कम लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। गिरियन समुदाय जगह जगह बाइबल रखता है और उनका कहना है कि उन्हें अनेक पत्र प्राप्त होते हैं, परंतु मुझे कई बार शक होता है कि कोई उन बाइबलों को पढ़ता भी है या नहीं। आज हमारे पास बाइबल प्रतियों की कमी नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं। बड़े बड़े अगुए कहते हैं कि सुसमाचार एक दूसरे के विरोधी हैं, और वे बाइबल पदों का संदर्भ भी गलत देते हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर के वचन के भयानक अज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। मेरे मित्रों, आज शराब का सेवन वैसा ही है जैसा इसराइल में था। इसराइल के समान हम भी मुक्त विचारों के भ्रम में पड़े हुए हैं। हम हर एक बात पर आवाज उठाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, परंतु हम शराब के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। मेरे प्रिय प्रचारक इस विषय पर कुछ नहीं कहते। शराब के कारण सड़कों पर कितनी मृत्यु हो रही है, कितनी माताएं विधवा हो रही हैं, कितनी बहनें विधवाएं हो रही है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं देता। शराब को हम बीमारी कहते हैं, पाप नहीं। इस बीमारी के विषय में एक डॉक्टर ने कहा है, यह बीमारी स्वेच्छा से मोल ली जाती है। यह एक बीमारी है जिसकी लत लग जाती है। यह बीमारी बोतल में आती है। यह बीमारी सैकड़ों हजारों परिवारों को तोड़ देती है। यही एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को पाशविक बनाती है और अपराध करवाती है। यह बीमारी मार्ग दुर्घटना का कारण है। यह बीमारी लाइसेंस के द्वारा बिकती है। यह बीमारी बाजार में बिकती है। यही एक बीमारी है जिससे सरकार कर वसूलती है। मेरे प्रियो, हम इन तथ्यों के प्रति अंधे हैं, क्योंकि शराब के लाभ का देश पर महान नियंत्रण है। हम इसके द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं और परिणाम स्वरूप हमारा देश डूबता जा रहा है। आज हमारे समाज की नई नैतिकता है, परंतु वह नई नहीं है, क्योंकि इसराइल 2700 वर्ष पूर्व इसका व्यवहार कर रहा था और तब भी यह नई नैतिकता नहीं थी। यह तो सदोम और अमोरा के समय से ही था, जिन्हें परमेश्वर ने दंड स्वरूप आग से नष्ट कर दिया था। कलीसिया समलैंगिकता को पाप नहीं कहती है, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:7 में प्रभु यीशु कहता है कि हमारा नया जन्म का होना आवश्यक है। यदि समलैंगिकता को पाप माना जाए तो परमेश्वर उसका निवारण करता है। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को दंड दिया, तो हम तो चुने हुए नहीं हैं। हम दावा नहीं कर सकते। होशे की पुस्तक में परमेश्वर ने दंड देने के कारण को स्पष्ट किया है। आज होशे एक भुलाया हुआ भविष्यद्वक्ता है, इसलिए प्रचारक इन विषयों पर चर्चा नहीं करते। होशे नबी की पुस्तक 4:3 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। लिखा है, इस कारण यह देश विलाप करेगा। बचपन में हम एक नाले पर तैरने के लिए जाते थे। उस नाले का पानी इतना स्वच्छ था कि 25 फुट नीचे भी साफ दिखाई देता था। आज उसकी दुर्गंध दूर तक जाती है। हमने अपने देश को दूषित कर दिया है। कभी अनाज की कमी नहीं थी, परंतु आज हर वस्तु की कमी है। जब परमेश्वर दंड देता है, तब भूमि भी दुख पाती है। मनुष्य के पाप के कारण पशु और पक्षी भी कष्ट उठाते हैं। होशे नबी की पुस्तक 4:4 में आगे लिखा है, देखो कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। याजक भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। वह प्रजा को चेतावनी नहीं देता था। अतः परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भी दोषी ठहराया है। होशे 4:5 में लिखा है, तू दिन दुपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। लिखा है, मैं तेरी माता का नाश करूंगा, अर्थात देश का सर्वनाश होगा। इसराइल में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जैसे आज ढोंगी प्रचारक हैं। वे कहते थे सब कुछ अच्छा होगा। आज समय बदल गया है, बाइबल पुरानी हो गई है। 10 आज्ञाएं तो हमारे पूर्वजों के लिए दी गई थी। हम सुधारवादी और आधुनिक विचारों के हैं। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि हम घृणित और पतित हैं। हम पद 6 में देखते हैं होशे की पुस्तक का सबसे अधिक प्रचलित पद है। होशे 4 उसके 6 पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ध्यान दीजिए, लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। उनके पाप में गिरने का कारण था परमेश्वर के ज्ञान की कमी। मेरे मित्रों, यदि आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर के वचन के ज्ञान से चूकते ही आपका मसीही जीवन विफल हो जाता है। आप चाहे जितने भी सेमिनार और सभाओं में जाएं कि आप सफल परिवार, व्यापार और सामाजिक जीवन की शिक्षा लें, आप विफलता का पुतला ही बने रहेंगे। यह पुस्तक स्पष्ट कहती है कि हम युक्तियों और विधियों द्वारा मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन के व्यक्तिगत ज्ञान की आवश्यकता है। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए उत्साहित रहता हूँ, यहाँ तक कि होशे के पुस्तक की शिक्षा भी देता हूँ। मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण नाश होता है। आज कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता है। परिवार में बच्चे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर चाहता था कि इसराइल का हर एक जन उसका याजक हो। प्रभु राज में ऐसा ही होगा, परंतु यहां परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। और तब वह आगे कहता है, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया, इस कारण परमेश्वर उन्हें और उनकी संतान को भी छोड़ देगा। परमेश्वर से दूर रहने का लंबा समय हो जाना उनके लिए कठिन था, फिर भी वे दूर थे और अब उनके धन का समय आ गया था। परमेश्वर ने पहले ही उनके पापों का उल्लेख कर दिया है। उन्होंने 10 आज्ञाएं तोड़ी थी, इसलिए वे दंड अवश्य पाएंगे। होशे 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसकी जाति को असंख्य बनाएगा और इसराइल में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु परिणाम यह हुआ कि संसार में पापियों की संख्या बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका अनुग्रह पृथ्वी पर उतरा और मुझे परमेश्वर का वचन बाइबल प्राप्त हुआ है और मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। परंतु इसराइल अज्ञानी था और उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था। लिखा है आगे, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। इसराइल की महिमा उनका मंदिर था, जहां परमेश्वर की महिमा शकीना उपस्थित रहती थी, जो उनके मध्य उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति थी, वही उनकी मार्गदर्शक थी, तथा अन्य जातियों में जो बहुदेववाद को मानते थे वह राष्ट्र एक परमेश्वर का गवाह था। वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर के उपासक थे। यह उनका वैभव था जिसे देखने के लिए दूर देश से शीबा की रानी आई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर होशे के द्वारा कहता है कि वह उनकी महिमा मिटाकर उन्हें वैरी का अधीन करके दास बना देगा। तब वैरी कहेगा, वे तो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा होने का दम मारते थे, भरते थे। देखो उनका क्या हो गया है, उनका परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है। आज हम आराधनालयों के द्वार बंद देखकर कहते हैं कैसी लज्जा की बात है, परंतु परमेश्वर दंड दे रहा है। होशे 4:8 में लिखा है, वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। वे पाप तो करते ही थे, परंतु पाप पर गर्व भी करते थे। जब मैं प्रचारक का काम करता था, तब हम अपने अंतिम सप्ताह के बारे में चर्चा करते थे और आनंद उठाते थे, और हमारा कभी कभी अपने कामों के प्रति हम घमंड भी करते थे। इसराइली भी ऐसा ही कर रहे थे। कहने का मतलब है कि वे अपने पापों पर घमंड कर रहे थे, वे प्रजा के पापी होने की लालसा करते थे। मेरे प्रियो, आज कई विश्वासी भी दूसरों के पापी होने की लालसा करते हैं, परंतु अपने जीवन को हम नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को, अपने जीवन को झांक करके देखें कि क्या आज मैं और आप अपने पाप पर घमंड कर रहे हैं, या हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और हम उसके पास आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आएं, पश्चाताप करें और उससे क्षमा प्राप्त करें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि आप इसराइल के जीवन को देख रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाएंगे हम यीशु के लिए सदा, नदियां है जहां।